सप्तम द्वितीय खंड सप्तम अध्याय हम लोग अनुसंगबद्धीय समात्मानं तथेदं यथा समाधो मुनयो भी अब्धितो ये नद्या प्रदिष्टा इव नाम रूपे। इसके व्याख्या बतला रहे थे, तो इसको समझने के पहले ये एक चीज समझिए। संसार में सभी सुख चाहते हैं, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो सुख नहीं चाहता, दुख कोई नहीं चाहता। सुख का विपरीत है दुख, किंतु चाहने से कुछ नहीं होता। दुख भी अवश्य आता है, सिर पर चढ़ कर भोग करा लेता है, और सुख जिस पद्धति से संसार के लोग सुख पाना चाहते हैं, सुख की छाया को भी वे लोग स्पर्श नहीं कर पाते। अंतिम दम तक मरते मरते बड़े दुखी होकर के इस संसार से विदा हो जाते हैं। आखिर ये सुख है क्या? आदमी समझता है कि हम मर जाएंगे दुख दूर हो जाएगा, मरने के बाद में अब दुख नहीं होगा, जो है इसी जन्म में ही दुख जो भोग रहे हैं, इसलिए सुसाइड लोग करते हैं। पहले सुख को समझिए। सुख में बस मैं हूं, सुख का विषय और आश्रय दो नहीं है, केवल आश्रय है, विषय उसमें नहीं है। क्या समझे? सुख में विषय नहीं है, आश्रय। मैं भोगता हूं, मैं भोग करूंगा सुख, उसमें मैं ही सब कुछ है, इसमें दूसरा कुछ नहीं है। सब समय मैं भोगता हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुख चाहता हूं, मैं खाता हूं, मैं रसास्वादन करता हूं, मैं देखता हूं, ये मैं ही मैं है, और उससे वो सुख पाना चाहता है। इसके बाद में एक आनंद नाम की चीज है। आनंद में विषय और आश्रय दोनों है। कैसे? एक आदमी खुद खाता है, उसमें जो सुख होता है उससे अधिक उसको सुख होता है अपने प्रेमी किसी को खिलाए। संसार में हमारे जो प्रिय व्यक्ति हैं उन पर मेरी ममता है, और वो कहीं से आ गया तो पहले उसे हम खिलाएंगे, और उस खिलाने में अपने खाने की अपेक्षा बहुत अधिक सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए जो प्रिय व्यक्ति हैं ये हो गए विषय, और मैं हो गया आश्रय। मैं भूखा रह करके भी दूसरों को खिला रहा हूं। प्रिय व्यक्ति में जैसे बेटा है, हम लोग के पिताजी थाल में उनको परोस दिया जाता, और मैं जरूर जल्दी से पहुंच जाता उस समय में, और हमको खिला करके तब खाते। राम के संबंध में सुना है, कृष्ण के संबंध में सुना, महाराज नंद बाबा अथवा महाराज दशरथ, नंद बाबा एक तरफ में बलदेव जी को और उनको बैठा करके खिला करके जब संतुष्ट हो जाते, किलकारी मार करके इधर उधर चले जाते, तब फिर खाते बड़े प्रेम के साथ। इसमें विषय कौन हो गया? कृष्ण। आनंद बाबा हो गया आश्रय। अपने जो खाते उसे लग्न आनंद हो रहा है कृष्ण को खिलाने में। इसलिए आनंद में जो चीज है विषय और आश्रय है। ये अद्वैतवादी हैं, निर्विशेषवादी हैं, वो क्या चाहते हैं? अत्यंत दुख निवृत्ति, और इसी का नाम है सुख। सुख नाम की कोई दूसरी चीज नहीं है। जब सब प्रकार के दुख सब दूर हो गए तो उसी को कहते हैं अत्यंत दुख निवृत्ति रेव मुक्ति, इसी को मुक्ति। एक आदमी को पकड़ करके बांध रखा है और उसको छोड़ दिया तो उसकी मुक्ति हो गई, तो अब जरा सुखी हो गया। ये दुखी किस लिए था? बांधने दूसरे ने उसके बांध दिया था, गला कोई दबा रहा था, मर रहा था, उसको छोड़ दिया, मुक्ति उसकी हो गई, जेल में पड़ा था वो मुक्ति हो गई। इसलिए कोई दुख में था इसलिए उसको जेल से जब छोड़ दिया तो ये मुक्ति हो गई, तो अपने को सुखी मानता है। किंतु जब जेल से बाहर था पहले, उसकी तुलना में जेल से छोड़ा गया उसको क्या सुख में क्या मिला? पॉजिटिव रूप में उसे कुछ भी नहीं मिला। तो निर्विशेषवादियों का, ज्ञानी लोगों की मुक्ति ऐसी ही है, उसमें अपना ही सुख चाहते हैं। इसी तरह से भगवान की सत्ता में अपनी सत्ता को मिला देना चाहते हैं, निर्विकार की सत्ता में। किस लिए? दुख की अनुभूति न हो। क्यों? वो आनंदमय है, आनंदमय ब्रह्म। किंतु जब अपनी सत्ता को उसमें मिला देगा तो वो आनंद भोग कर रहा है कि दुख भोग कर रहा है उसको मालूम होगा? पत्थर की भांति नहीं होगा। इसलिए यहां पर दो उदाहरण दिए गए, यथा समाधौ मुनयोस् अभ्युतोये और दूसरा नद्य प्रविष्टा इव नाम रूपे। ब्रह्मवादी लोग, निराकारी लोग, जगत से न इति न इति, स्त्री पुत्र में सुख है नहीं, इस शरीर में सुख है नहीं, मन में सुख है नहीं, संसार के किसी भी विषय में सुख है नहीं, नैति करते 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 बंद गोभी के पत्तों की भांति सब हटा देते हैं। एक हमारे जैसा परम बुद्धिमान शिष्य था कोई, तो वो गुरु जी के साथ में कहीं गया, तो जिस घर में गया वो घर के मालिक बड़ा अच्छी नौकरी पर थे, कहा जी गुरु जी बहुत दिनों के बाद में आया है, बाजार में आज नई गोभी बंद गोभी निकली, काफी रेट ऊंचा, उसने खरीद करके लाया। कहा शिष्य को, कहा आज सुंदर गोभी का की सब्जी होनी चाहिए, बहुत सुंदर। कहा जी अच्छी बात है। वो तो चला गया इनको दे करके, और इन्होंने उसके जाने के बाद में गोभी को अमान्य करना है ना, अमान्य माने क्या, काटना है, सब्जी के लिए प्रस्तुत करना है। तो उसने कहा जैसे ऊपर में पत्ता है उसको हटाया, फिर दूसरा पत्ता देखा ये पत्ता ही, फिर हटाया। इस तरह से पत्ता हटाते 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 देखा जी पत्ता ही पत्ता, अंत तक पत्ता ही मिला, सबको लेकर के उठा करके फेंक दिया, इनको इस तरह बैठा हूं ना, अंत तक पत्ता को देखा बंद, तुम लोग समझ रही बंद गोभी, अंत तक पत्ता ही पत्ता रहा, उसको कुछ नहीं मिला। कहे बेकार की चीज पत्ता पत्ता, वो लेकर के घूरे पर फेंक दिया बाहर में, और गैया उसे खा गई। जब वो लौटा दुकान वहां अपने काम से, आज जल्दी ही आ गया, तो सोचा जी हमारे लिए प्रसाद में कुछ तो रखा होगा, तो उसे पूछा जी गुरु भाई हमारे लिए गुरु जी को ये सब्जी दिया और हमारे लिए कुछ रखा, तो सब्जी कहाँ दिया? आ तो जो दिया था, अरे वो तो केवल पत्ता था, उसके अंदर में कुछ मिला ही नहीं। तो ऐसे निर्विशेषवादी लोग जगत में कहीं भी सुख नहीं देखते, ब्रह्म है कोई चीज ये नहीं देखते, केवल निराकार देखते हैं। इसलिए उनका सुख यही दुखों से निवृत्ति होकर के अंत में एनिहिलेशन टू ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, बस समाप्त। उस समय में इतनी समाधि में हो जाते हैं निर्विशेषवादी लोग, मन को एकाग्र कर जम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा सप्त समाधि एकदम निश्चल हो जाते हैं, यहां तक कि सांस की गति को भी रोक देते हैं, और उस समय में मैं कौन हूं ये भी भूल जाते हैं, वो ब्रह्म क्या है वो भी भूल जाते हैं, जीवो एकदम हो जाते हैं। गोपियों के लिए कृष्ण कह रहे हैं उद्धव को, क्या ऐसे ही समाधि में जैसे मुनि लोग मनन करने वाले, मनन करने वाले मैंने क्या, ये ब्रह्म नहीं है, ये आनंद नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये आनंद नहीं है, मनन करते 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 जब समाधि में पहुंच जाते हैं, आनंद भी भूल जाते हैं, अपने को भी भूल जाते हैं, अपना इष्ट भी भूल जाते हैं, सभी कुछ भूल जाते हैं, एकदम जीरो जैसा हो जाते हैं। उस समय सिद्ध देव की शुद्ध बुद्धि नहीं रहती। मैं, मेरा नाम, ब्रह्मा, सुख, कुछ का भी पता नहीं। तो क्या गोपियां भी इसी प्रकार से कृष्ण में ऐसे अनुरक्त हो गई, अनुसंगबद्ध। अनुसंग माने क्या? कृष्ण में चित्त को ऐसे संग में रंग दिया कि वो सब कुछ भूल गई। मैं ये भी भूल गई और सब कुछ भूल गई। धन नहीं, ऐसा मत समझो। अच्छा, तब फिर ऐसा कहें जैसे नदियां 18,000 या 1800 मील चल करके गंगा पहुंची समुद्र में, और गंगोपसागर में जाकर हजारों धाराओं से समुद्र में मिली, और मिलने के बाद में जब उसका पानी उसमें मिल गया तो फिर गंगा उस पानी का नाम नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। तो क्या ऐसे कहे? नहीं। तो कैसे? उसी के लिए यहां पर बतला रहे हैं सनातन गोस्वामी जी, अनुसंग, निरंतर संग, आसक्ति के साथ में। कृष्ण की उपलब्धि उनको है, कृष्ण का रूप माधुर्य पान कर रही हैं, उनके संग में विलास इत्यादि कर रही हैं, जितना कृष्ण के लीलाओं में होता है वो सब को देख रही हैं, और मैं उनकी सेवा कर रही ये भी देखती हैं, किंतु ऊपर से ये मालूम नहीं होता। अपने को विस्मरण कर चुके हैं, ये बात तो ठीक है। योगी लोग भी विस्मरण अपने को करते हैं, किंतु विस्मरण में कृष्ण का स्मरण है, कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण के विलास का, सबका चिंतन गोपियों को परिपूर्ण रूप में माधुर्य का आस्वादन करने के कारण उनको ऐसा हो रहा है, और उनको निराकार होने के लिए। बस दोनों में बहुत अंतर है। उसी को कुछ और भी ये बतला रहे हैं, हमें आसक्त होने के कारण अपने अपने नाम का विस्मरण जैसे मुनियों को हो जाता, मनन नहीं करते। अब क्या करते हैं? चुपचाप पत्थर जैसा, उसमें सुख भी उनको अनुभूति नहीं है ब्रह्म की। मथुरा में ऐसे ही ब्रह्मवादी लोग हैं, किंतु लोगों को ठग करके ऐसा करा दिया है, मूर्ख बना करके, पशु की भांति मूर्ख बना रखा है। वो हम कृष्ण का भजन करते हैं, कृष्णम शरणम मंत्र भी दे देते हैं, ऐसे ठक करके न जाने इनको क्या मिलता है, लोगों को बेवकूफ बना रखा है, पूरा बेवकूफ। लोग समझते नहीं, समझते क्या? ये तो देख रहे हैं कृष्ण का लीलाओं का, भागवत भी पढ़ते हैं, कृष्ण का गान भी, कीर्तन भी, हरे कृष्ण, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, ये भी करते हैं, और कितने आलाप लेते हैं, कोई कोई रोते भी हैं, ऐसा करते हैं। लोग समझते नहीं, जैसे कृष्ण भक्ति में और इसमें क्या अंतर है, नहीं समझ पाते। उस समय जब गोपियों का जो सहज समाधि होती है, रास्ते में चल रही हैं, किंतु ऐसे समाधिस्थ हैं कोई समझ नहीं सकता, उसमें कृष्ण की वैचित्रपूर्ण विलास और उनकी लीलाएं हैं, उनका नाम है, सबको अत्यंत अधिक रूप में स्मरण करती हैं। तव कथा अमृतम तत् जीवनम कवि भीरीणितम कर्ण शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गृढ़ंती ते भूरिदाज। गोपियों को मालूम नहीं है जब मैं क्या कर रही हूं, किंतु कि एक एक जो शब्द, एक एक जो कुछ निकल रहे हैं, मानो वो सभी क्या है, एकदम परिपूर्ण शब्द, किंतु वो नहीं समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूं, क्या कर रही हूं। कृष्ण नहीं, और समझते हैं कि कृष्ण है सामने, और उनके लिए उलाना दे रही है, तुम्हारी कथाएं विष है, विष मारने के लिए, विष से मारने के लिए हमें ऐसा किया, हमारा जीवन उत्तप्त हो गया, इस तरह से कह रही है। किंतु है किसमें? सहज समाधि में। इसको समझ सकते हैं व्यास और सुखदेव गोस्वामी लोग, नारद गोस्वामी समझ सकते हैं, साधारण नहीं। गोपियों का प्राप्त क्या है? प्रेम। और मुनियों का प्राप्त क्या है? सायुज मुक्ति। इसलिए मत समझ लो जैसे ऐसे ही कृष्ण कह रहे हैं उनके लिए, गोपियों के लिए नहीं, इसलिए पहले न लगा दिया। साधारण अर्थ करते हैं गीता प्रेस इत्यादि में, इसका अर्थ ऐसे ही है, ये नदियों के समान नाम रूप को भूल करके और समाधिस्थ हो गई, और जैसे मुनि लोग मनन करते करते समाधि में सब कुछ भूल जाते हैं, गोपियां भी वैसे हो गई। तो फिर इनका वैशिष्ट क्या रहा? और भी कह रहे हैं, समुद्र में नदियां नदियों की भांति और मुनियों का दृष्टांत के द्वारा यह प्रतिपन्न हो रहा है। मुनियों का जो प्राप्त है साइज मुक्ति है, एक तरह से जीरो है आनंद के लिए, सुख के लिए, अनुभूति के लिए। कभी मान लेंगे ये मन के द्वारा कुछ सुख है, सुख उसमें नहीं है, तभी मान लो जो है थोड़ा सा दुख की अनुभूति नहीं है, यहां तक तो है। और गोपियों का क्या है? इनका है आत्मसत्ता विद्यमान रहती है, और भक्ति की सिद्धि हेतु विशेषता उनका चित्त, उनकी इंद्रियां, उनका मन सब कृष्ण में अनुसंग, अनुसंग माने क्या, एकदम उसी में डूब जाती है। उनकी इंद्रियां जितनी भी हैं सब, उनकी बुद्धि वृत्ति उसमें संपूर्ण रूप से सेवा में लग जाती है, इसलिए उनका विस्मरण कभी नहीं होता। किसका? अपना तो हो जाता है शरीर का, कल बतलाया था ना, मैं कहां जा रही हूं, मैं कौन हूं, किंतु कृष्ण का विस्मरण होता है, कृष्ण में चित्त ऐसा है कि इनका विस्मरण हो जाता है। यही दोनों में अंतर है। इससे समस्त विषयों में यद्यपि ऊपर से मालूम होता है, ये जो उदाहरण दिया गया है विस्मरण के अंश में, किंतु आनंद की अनुभूति में नहीं। जैसे जैसे वो लोग विस्मरण हो जाते, ये भी हो गई, किंतु वो लोग जीरो पर जाकर के अटक गए, और ये लोग क्या कृष्ण के विलास इत्यादि का चिंतन कर रही, उनकी सेवा कर रही हैं। किंतु एक बात, एक शंका उदित होती है, हम लोग तो शंका नहीं कर सकते, इतनी सामर्थ्य ही नहीं है, न शास्त्र का ज्ञान है, न विचार है, न चिंतन। ये सनातन गोस्वामी एक आदमी को लेकर के शंका उत्पन्न करे, क्या भाई कृष्ण ने एक जगह कहा है कि नाहम आत्मानम आशे मदभक्त ईशाद भीर बिना श्रियम अत्यंत की बाती जैसा गति हम परा। श्रीमदभागवत में उन्होंने नौवे स्कंद में उन्होंने लिखा है। क्या एक दूसरा भी ऐसा ही पर्लल श्लोक है, उद्धव जैसे हमारे प्रिय हैं, वैसे प्रिय स्वयंभू हमारे जो पुत्र हैं ब्रह्मा वो नहीं, शंकर जी हमारे परम मित्र हैं वो नहीं, उनसे भी अधिक, और लक्ष्मी जो हमारे हृदय में बैठती हैं सबसे बस्तक्षल पर, वो भी हमारी प्रिय उतनी नहीं है, हमारी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है जितने प्रिय हमारे उद्धव हैं। क्योंकि भक्त हमारे हृदय होते हैं और भक्तों का मैं हृदय होता हूं, इतने प्यारे होते हैं। लक्ष्मी जी को कहा, यहां पर समस्त लक्ष्मियों में लक्ष्मी कौन है? श्रीमती राधिका जी सर्वश्रेष्ठ महालक्ष्मी की महालक्ष्मी हैं। तो यहां पर इसको देखने से मालूम पड़ता है कि भगवान के जो भक्त हैं वो लक्ष्मी जी अर्थात राधा जी से भी अधिक प्रिय हैं कृष्ण को। ये एक शंका आई, लक्ष्मी है ना, इसलिए तो यहां पर कहते हैं साधु हमारे इतने प्रिय हैं, उनके छोड़ करके मैं अपनी आत्मा को और अपनी प्रियसी को भी स्प्रिया नहीं करता। नाम आसमान आश्रय, मैं उनकी स्प्रिया नहीं करता। किसको? साधुओं को। और उद्धव ही उनकी आत्मा है, ऐसे साधुओं को, अपनी आत्मा को भी नहीं चाहता और लक्ष्मी जी को भी नहीं चाहता। तो समस्त लक्ष्मियों में लक्ष्मी राधा जी को भी नहीं चाहता, ऐसा प्रसंग आ सकता है, किसी को शंका हो सकती है। इसलिए ऐसे मालूम होता है कि भक्त ही उनके श्रेष्ठ हैं सबसे,
और भी कहा है, आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्थ, भक्तों का यहाँ पर भी और भी बहुत जगहों में कहा है। यहाँ पर गोपियां सी तुल्य हैं, इसलिए यहाँ पर एक शंका उठेगी, जैसे तो लक्ष्मी जी की अपेक्षा भी भक्त भगवान के प्रिय है। इसको दूर करने के लिए गोपी महात्मा वर्णन के समय में कृष्ण कुछ छिपा रहे थे अब तक उद्धव को, किंतु वहां अब उसको खोल रहे हैं। वो छिपा क्या रहे थे? जैसे गोपियां हमारे विरह में कातर हो जाती हैं, उद्धव उद्धव का करके जरा चुप रह गए, माने क्या? मैं उसके उन लोगों के विरह में परम कातर हो रहा हूं, इस चीज को छुड़ा, जरा छिपा लिया, पीछे से उन्होंने व्यक्त किया है। यह भी श्रीमद् भागवत में पीछे से बतलाया गया है। उन्होंने फिर कहा क्यों नहीं, हृदय में ये भावना आई और कुछ बोलना चाहते, फिर बोला क्यों नहीं? यदि उद्धव को कहूं तो उद्धव जाकर के कह देगा ये कृष्ण भी तुम्हारे लिए बड़े परम कातर हैं, वो रोते रोते हमसे कहे, सुनते ही क्या होगा। गोपियां और इसे जानकर अधिकतर महाशोक में मुह्यमान हो जाएंगी, उन्मादिनी बन जाएंगी, हो सकता है कि प्राण भी न धारण करें। यदि हम कहते हैं कि देखो आप हमारे प्रिय, आपके बिना मैं रह नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब? यदि किसी को हम कहते हैं कि देखिए आपके बिना मैं रह नहीं सकता, तो ये प्रेम को उघाड़ना हुआ, प्रेम हल्का हो गया, इसके मतलब आपके हृदय में उतना प्रेम नहीं है। इसलिए प्रेम को छिपा कर जितना गाढ़ विषय ये सब व्यक्त नहीं होना चाहिए। इसलिए कृष्ण ने सोचा कि ये अधिक उघाड़ करके कहना उचित नहीं है, और यदि कह दूं तो गोपियां इसके लिए एकदम उन्मादिनी हो जाएंगी, इसलिए उसको छिपाया। आप उसी को उद्धव जी के लिए संतोष के लिए, कृष्ण के लिए गोपियां इतनी तड़प रही हैं और कृष्ण को कुछ नहीं है, इसलिए कुछ कुछ व्यक्त करने की अभिलाषा कर रहे हैं। और मैं इतना कठोर हूं, उद्धव यदि समझेगा हमारे भाव को तो समझेगा नहीं जी मैं कौन कठोर हूं। कठोर नहीं, कल बतलाया था ना, गोपियों को उससे विलग हो जाते हैं, उनको इतना कठोर बन जाते हैं, किस लिए? उनके प्रेम को वर्धन करने के लिए, और फिर उनको भी आस्वादन कराने के लिए, अपने भी आस्वादन करने के लिए। तो इसलिए कहते हैं जब उद्धव नहीं समझ सकेगा, उद्धव से महाकठोर है, गोपियां इतने बिना में तड़प रही हैं और कृष्ण एक बार भी नहीं जाता, इसलिए बड़े दुखी होंगी उद्धव। इसलिए कुछ साधुओं की महिमा यहां पर बतला रहे हैं। नाविदन मूल में है, नाविदन नहीं जाना, क्या पद्धति के द्वारा अहम शब्द के साथ में इसका जोड़ना है, यह संस्कृत का व्याकरण का है, संस्कृत के व्याकरण को छोड़कर के आगे चलो। तात्पर्य कि नदियां जिस प्रकार समुद्र में प्रविष्ट होकर के नाम रूप को प्रत्याग कर देती हैं, और मुनि लोग समाधि में हमारे में प्रविष्ट होकर के अपने नाम को और जिसे मिलते हैं उसके नाम को यह सब कुछ को भूल जाते हैं, शून्यता को प्राप्त हो जाते हैं। पहले तो वो मननशील थे किंतु अब मुनि नहीं रहे, उनको मुनि नहीं बोला जा सकता, अथवा अभिमान्य शून्य होने के कारण जब वो समाधिस्थ हो गए अब वो मननशील धर्म रहा नहीं, उसमें सब अनुसंधान रहित होकर के अभिमान शून्य हो गए, तथा अमी ए रूप सदानुसंधान रहित होइया। ओ ये कह रहे हैं जिस प्रकार से गोपियां सब कुछ विस्मरण हो गई कृष्ण के लिए और कृष्ण की चिंता करने लग गई, उनके विलास का चिंतन करने लगी, उसमें तन्मय हो गई, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या गोपियों में मैं ऐसा तन्मय हो सकता हूं सब कुछ छोड़ करके अपने बाप मैया भैया अपनी पत्नी लाखों भक्त करोड़ों भक्त हैं लाखों संसार के प्राणी हैं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। जे जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। गोपियां सबको छोड़कर के संपूर्ण रूप से कृष्ण में तन्मय हो रही हैं, अपनी बुद्धि की सारी वृत्ति उनमें लगा दिया है। कृष्ण के लिए ऐसा संभव कभी नहीं हो सकता जो एक के लिए सारे विश्व को छोड़ दें। गोपियां तो करोड़ों हैं, किसके लिए वो छोड़ेंगे? किसी को छोड़ सकते हैं? रुक्मिणी को छोड़ देंगे, उनका चिंतन? अपने बेटे शाम्ब को छोड़ देंगे? नंद बाबा को छोड़ देंगे? यशोदा मैया को छोड़ देंगे? ब्रज का चिंतन छोड़ देंगे? अपने एक छोटे से बछड़े को छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। किसी भी भक्त को, चाहे तम अभी नीचे में अभी है, किसी को छोड़ देंगे? किसी को? अभी एक ध्रुव जैसा सकाम भक्त है, उसको छोड़ देंगे? उसके हृदय में आए कि नहीं आए? उसको भी नहीं छोड़ सकते, किसी को नहीं छोड़ सकते। इसलिए गोपियों के समान में समस्त विश्व की सारी चिंताओं को छोड़ करके और कृष्ण में तन्मय हो जाना, ये कृष्ण के बस की बात नहीं है। वो किसी को नहीं छोड़ सकते, इसलिए उनके ऋणी है। मैं कभी ये भूल नहीं सकता कि मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण भगवान हूं। इसको भूल सकते हैं? कृष्ण कृष्ण नंदनंदन होने पर गोपियों के साथ में विलास भी कर रहे हैं, उस समय उनकी भगवत्ता दूर नहीं होगी, जरूर रहेगी। हो सकता है माधुर्य के द्वारा कुछ ढक जाए, किंतु कृष्ण का ये मैं भगवान हूं सर्वैश्वर्य पूर्ण, ये भाव कभी नहीं जान दूर हो सकता, निश्चित रूप में रहेगा। ये कभी आज तक उनको कभी नहीं विस्मरण हो सकते, मैं कृष्ण हूं। नंदनंदन के रूप में भी जहां भी रहेंगे जरूर उनमें भाव रहेगा। गोपियां ये सखी मैं कौन हूं, कहां जा रही हूं, किस लिए ले जा रही हूं, मूर्छित होकर के गिर जाती हूं। जेहेतु जे जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। कृष्ण की यहां पर जो प्रतिज्ञा थी यहां पर त्यक्त हो गई, छूट गई, नहीं कर सके। गोपियां जैसे सब कुछ छोड़ करके करती हैं, नहीं कर सकते। इसलिए उद्धव को कह रहे हैं, इसलिए कृष्ण ये भी कह रहे हैं, उनके विरह में बाची बोना, ये अश्लीलता का आरोप नहीं किया उन्होंने। उद्धव तुम कह देना जो उनके विरह में नहीं बचूंगा, ये नहीं कहा। क्यों? किन के लिए? एक के लिए? उनके तो कितनी हैं। गोपियां जैसे एक कृष्ण के लिए कह सकते हैं मैं उनके बिना नहीं बस, किंतु कृष्ण कैसे कहेंगे, किसके लिए कहेंगे? वो नहीं कह सकते, इनके लिए असंभव है भाई, संभव कभी नहीं हो सकता है। बुझते पार्च? कृष्ण यदि कहें हे राधे हे ललिते, मैं तेरे अतिरिक्त बच नहीं सकता, हमारा समस्त मन प्राण जो कुछ है सब तुमको मैंने अर्पण कर दिया, कह सकते हैं?
कह तो सकते हैं, कर
किसी को ठग देंगे कह करके? जिसको कहेंगे, मान लो कि यदि कर भी दिया तो बाकी सबके ऋणी हो गए, सबके ऋणी हो जाएंगे उसको अतिरिक्त, इसलिए उनके लिए संभव पर नहीं। इसलिए कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा को यहाँ पर भंग करते हैं, जैसे ये मेरे लिए संभव नहीं है, किसी के लिए मैं किसी को छोड़ नहीं सकता। एक कानी कौड़ी का भक्त है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेवसा, उसके हृदय में मैं रहता हूं। एक व्यभिचारी भक्त है किंतु अनन्य रूप से कृष्ण के अतिरिक्त और किसी का भजन नहीं करता, किंतु उसमें दुराचार है, उसको भी नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अनन्य रूप से भजन कर रहा है। अनुसंग का अर्थ बतला रहे, अनुसंग मुक्तिवादियों के लिए, निर्विशेषवादियों के लिए यह अर्थ होगा संग प्रत्याग कर, और इनके लिए होगा निरंतर परम आसक्ति के सहित विशेष संग के द्वारा जहां दे धी, धी मैंने मन की वृत्ति बुद्धि अंतःकरण, अखिल जितनी भी वृत्तियां हैं वो क्या चीज, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम की अंतिम सोपान।